मत का संगठन सत्ता प्राप्ति के लिए जब होता है तब उसका नाम पार्टी है। तो पार्टी तो सत्ता प्राप्ति के लिए ही होती है ना, वो पार्टियां शामिल हुई। अब इसमें जितना जेपी की मर्यादा जितनी इसके लिए जिम्मेवार है, उतनी हमारे नागरिक की शिथिलता भी जिम्मेवार है। मैं इसका साक्षी हूं कि उन्होंने लगातार कोशिश की कि हर जगह संघर्ष समितियां बने नॉन पार्टी नागरिकों की, पक्ष निरपेक्ष नागरिकों की ही ये समितियां बने। लेकिन पक्ष निरपेक्ष नागरिक कहीं सामने नहीं आए। तब वो इन पार्टियों को मना कैसे कर सकते थे? यहां तक हुआ कि जहां पर सर्वोदय के कार्यकर्ता बहुत क्रियाशील नहीं थे, उन शहरों में मेरी सभाओं में भी पार्टी के नेताओं का ही नेतृत्व रहा। तो केवल जेपी को दोष देने से काम नहीं चलेगा, इसमें नागरिक का भी दोष है। हमारा नागरिक प्रमादशील है, उसको दूसरों से काम कराने की आदत हो गई। मराठी में कहावत है कि सांप मारना हो तो मेहमान से कहो, मेहमान उसके लिए अच्छा है सांप मारने के लिए। तो हमारे देश का नागरिक ये चाहता है कि जो कुछ होना है वो मेरे पुरुषार्थ के बिना हो, मेरे हाथ पैर हिलाए बिना हो, अनायास हो। तो वो क्रियाशील नहीं बना। नतीजा यह है कि हमारे नागरिक के पास दो ही बातें हैं, शिकायतें और मांगे। और इसमें हमारे तरुण भी अपवाद नहीं है, वो मुक्का उठा उठा कर हमारी मांगें पूरी करो बस इतना ही कहेगा, और हमारी शिकायतें दूर करो। कौन करो? सरकार करो। सरकार कौन है? भगवान है। तो ये नागरिक का ये रुख भी जेपी के इस आंदोलन में त्रुटियां और दोष पैदा होने के लिए जिम्मेवार है। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जब नागरिक ने, इसने कहा ना कल कांति ने कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब पार्टियों की प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो चुकी थी, उनको जेपी के आंदोलन से जीवन दान मिला, जैसे गांधी की विधायक संस्थाओं को भूदान से मिला था। वो क्यों मिला था? यही संस्थाएं शामिल हुई, वो निष्प्राण हो रही थी। तो इन संस्थाओं ने सोचा कि अब ये बहती गंगा है, इसमें हाथ धो लो। तो वो लोग शामिल हुए विनोबा के आंदोलन में। इस तरह से ये पार्टियां धूर्त हैं, उनकी कोई वक़्त कोई प्रतिष्ठा हमारे देश में नहीं रही थी। तो उन्होंने इस अवसर से लाभ उठाया। अब इसके लिए उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है? उनको नया जीवन मिला, वो अनुप्राणित हो गई। ये मैं जेपी की कैफियत नहीं दे रहा हूं, मैं उसका सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूं कि ये क्यों होता गया। जीती की कमजोरी मैंने आपको बता दी। उनकी एक दूसरी कमजोरी है अति उत्कटता और अति करुणा। जैसे मेरा बेटा अगर बीमार हो तो फिर किसी पैथी की मैं परवाह नहीं करता हूं, नेचुरोपैथी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एपैथी छोड़कर। उपेक्षा को छोड़कर फिर किसी पैथी की मैं परवाह नहीं करता हूं, ये जेपी के स्वभाव में दो और गुण कहिए दुर्गुण कहिए हैं, अति उत्कटता और अति करुणा। बांग्लादेश के वक्त उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग जो हिंसा कर रहे हैं वो हिंसा नहीं है, अगर कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाता है बंदूक के खिलाफ तो उसे कोई हिंसक कहेगा? वो तो नेचुरल रिफ्लेक्स है, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन, कि वो मुझे गोली मार रहा है और मैंने मुक्का उठा दिया, तो हिंसा नहीं है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इससे पहले तो उन्होंने कहा था ना कि माय कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस इज ग्रेटर देन जवाहरलाल जी, मैंने अहिंसा को जवाहरलाल जी से अधिक माना है, ये पहले कह चुके थे लेकिन बाद में ये कहा बांग्लादेश के वक्त। तो जब वो देखते हैं कि ये नीचे वाला आदमी दलित मनुष्य बहुत पीड़ित हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उनकी करुणा कहती है कि ये हाथ पैर हिलाए और हाथ पैर हिलाने में किसी को लग भी जाए तो क्षम्य है। तो इस कारण कभी कभी साधन का अविवेक हो जाता है। ये हुआ, कई दफा हुआ। एक तो उन्होंने गुजरात के आंदोलन की तुलना 42 के आंदोलन से की, समानता इतनी ही थी कि जनक क्षोभ का लोक क्षोभ का स्वाभाविक स्फोट था, इतनी अवश्य दोनों में समानता थी। लेकिन यहां पर अहिंसक हिंसा बहुत हुई, आप जानते हैं ना कि सभ्य मनुष्य के लिए तमाचे से गाली ज्यादा हिंसक होती है। पुलिस वाला मुझे लाठी मार दे तो उतनी चोट नहीं लगती जितनी गाली दे दे तो लगती है, तो गाली अहिंसक हिंसा है और ज्यादा भयानक है। इस तरह की गुजरात में हुई, लेकिन जेपी ने उसको इस तरह से उछाल दिया कि मानो कोई अभूतपूर्व घटना हो गई हो। अभूतपूर्व तो थी लेकिन इस अर्थ में नहीं थी कि शांति में प्रतिकार के रास्ते पर कोई नया मार्ग प्रशस्त हो गया हो उस दिशा में। तो ये बार बार हुआ उनके आंदोलन में, वो गुजरात में नहीं आना चाहते थे चुनाव के वक्त, क्योंकि चुनाव से मेरा संबंध नहीं है, ये मेरा आंदोलन सत्ता से संबंधित नहीं है, उन्होंने घोषित कर दिया था। लेकिन फिर आए, पार्टी के उनके मित्रों का आग्रह वो नहीं टाल सके तो आ गए। दिल्ली के मोर्चे में शामिल होने वाले नहीं थे, फिर वो आ गए, सत्ताकांक्षी मित्र सब आ गए, वो भी ईमानदार हैं, ये मत समझिए कि सब मतलबी हैं, मतलब के लिए नहीं आए थे। उनका तो ये विश्वास था ना कि अगर इस भ्रष्ट राज्य को हटाना है तो कोई प्रतियोगी सत्ता चाहिए, कोई प्रतियोगी पक्ष चाहिए, तो वो भी ईमानदार थे। फिर जेपी ने उनके कहने के लिए सब किया। इंदिरा जी के खिलाफ इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब ये तो मौका ही था अपोजिशन के लिए, लेकिन जेपी तो अपोजिशन नहीं थे ना, सिटीजन थे। फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक नहीं रुके, उसमें शामिल हो गए। क्यों हो गए इसको सोचने, हम सोचें सब मिलकर। इसलिए हो गए कि जिन साथियों ने उनका समर्थन किया था उनको वो कैसे छोड़ सकते थे, वो तो डेजर्टर कहलाते हैं ना। जब विनोबा ने कहा कि तुम रणछोड़ बन जाओ, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बन सकता हूं लेकिन अब तो मैं कमिटेड हूं, मेरे साथ जो लोग आए हैं उनसे मैं क्या कहूंगा, उनको कैसे मैं छोड़ सकता हूं, वो डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये हिम्मत जो गांधी में थी वो जेपी में नहीं थी। गांधी ने जब चौरी चौरा के कांड के बाद बारडोली का सत्याग्रह रद्द कर दिया, तो आपको मालूम है उनके बहुत से साथियों ने उनसे कहा कि गांधी अब तुम हिमालय जाओ, अब तुम्हारा काम यहाँ नहीं रह गया। और स्वराज के बाद जब वो 55 करोड़ देने के लिए कहा पाकिस्तान को, तब भी लोगों ने कहा प्रार्थना सभा में कि गांधी अब तुम हिमालय में जाओ, स्वराज आ गया, तुम्हारा काम हो चुका। तो गांधी ने कहा मैं जाने को तैयार हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरा हिमालय तुमसे अलग नहीं हो सकता, तो वहाँ हम सभी चले जाए। यह जयप्रकाश का इस तरह का व्यक्तित्व नहीं है, वो निर्णय कर सकते हैं, उन निर्णयों पर अडिग भी रहते हैं, उसके लिए चाहे जो त्याग कर सकते हैं, लेकिन साथियों को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन साथियों ने उनकी सहायता सहयोग उनके साथ किया हो, उन साथियों को वो छोड़ नहीं पाते। ये कारण है कि कभी कभी उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो कदम हमको अटपटे लगते थे, लेकिन एक कदम जो मुझे उनका अटपटा लगा फिर भी स्वाभाविक लगा, क्रम प्राप्त लगा, वो था चुनाव का। इंदिरा जी ने उन्हें चुनौती दी कि इसका फैसला सड़कों पर नहीं चुनाव से होगा, तो वो चुनौती उन्हें न स्वीकार कर ली। इस मतलब से नहीं कि मैं या मेरे साथी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ठीक है जनता ही फैसला दे, तुम सही हो या मैं सही हूं इसका फैसला जनता को ही करने दो, चुनाव कराओ, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। इसलिए इस फैसले को मैंने गलत नहीं माना। अब जब चुनाव का की उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, तो ये स्वाभाविक था कि कोई ऐसा एक विकल्प खड़ा करते कांग्रेस के लिए, इसमें वो लग जाते। ये आवश्यक भी था, ये स्वाभाविक भी था। तब से वो इस प्रयत्न में लग गए ये कांग्रेस का कोई विकल्प, पार्लियामेंट्री विकल्प मैं खड़ा कर सकूं। उससे पहले विकल्प की नहीं थी, लोक शक्ति की ही केवल कल्पना थी। तो अब आप ये देखेंगे कि इस गाड़ी के पटरी कैसे बदलती गई, ये पॉइंट्स कैसे शंट होते गए। इस क्रम से ये शंट होते गए। अब हम केवल उसका विश्लेषण करते हैं, इसलिए उसमें नहीं है हम। मित्रों, जो आंदोलन का नेता होता है वो कुछ तो तैरता है और कुछ बहता भी है। उसको प्रवाह के साथ जाना पड़ता है और प्रवाह के साथ जाते हुए वो तैरता है उस पार जाने के लिए। प्रवाह को सीधा काटता हुआ पार करता है एक ही जानवर, वो है सुअर। वो प्रवाह को सीधा काटता हुआ पार कर लेता है, लेकिन बाकी सारे जानवर प्रवाह के साथ बहते भी हैं और पार भी करते हैं। ये जेपी को भी करना पड़ा, ये गांधी को भी करना पड़ा। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये उसकी गतिमानता का लक्षण है कि वो आंदोलन का बहाव इतना तेज है, धारा इतनी तेज है कि उसमें कुछ तो बहना होता है और कुछ तैरना होता है। इस तैरने में मनुष्य कितना सफल हुआ ये तो आंदोलन के बाद ही कहा जा सकता है, उस आंदोलन के दौरान उसका निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो आंदोलन के किनारे खड़ा था और किनारे से उसका समर्थन करता था, जैसे वो खेल में होते हैं लोग देखने वाले और जोश दिलाते रहते हैं, तो जो मैं बायस्टैंडर था, किनारे खड़ा हुआ था, उसके लिए बहुत आसान था कि ये चाल ऐसी चलता तो होता, ये वैसी चलता तो होता। ये जो खेलों में जो बैठते हैं शतरंज देखने वाले, वो सारे इस तरह से सुझाते रहते हैं कि ये गोटी यहाँ रखो, वो गोटी वहाँ रखो। खेलने वाला तंग आ जाता है कि भाई मुझे खेलने भी देगा कि नहीं। ऐसे ही जो ड्राइवर ड्राइविंग जानता है वो ड्राइवर के बगल में बैठा हो तो उसको तंग कर देता है कि इस वक्त ऐसा करो ऐसा करो, तो वो सोचता है कि फिर ये क्यों नहीं चला रहा है, मुझसे नहा क्यों कहता है। तो उस तरह के हम लोग थे, और आप सब लोग हैं जब आंदोलन समाप्त हो गया उसके बाद। लेकिन आंदोलन की गर्मी जब तक होती है तब तक इन सारी बातों का इतना ध्यान नहीं रहता, और ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए जेपी के आंदोलन में ये सत्ताभिमुखता आ गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि सर्व सेवा संघ के पैर भी उखड़ गए। उसमें कुछ लोग ऐसे रहे अंत तक जिन्होंने कहा कि बस ये मर्यादा है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे अब हम नहीं जा सकते हैं, हमारी ये मर्यादा आ गई। लेकिन कुछ तो मिनिस्टर भी बन गए, और कुछ ने तो टिकट मांगा और नहीं मिला, तो नाराज भी हो गए। वो कहते हैं ना कि भाई भीख भी मांगते हो और फूंक फूंक और फूंक कर दी हुई चाहिए। गते व्याधि चिकित्सकः, बीमारी खत्म हो गई तो फिर वैद्य से क्या मतलब। सर्व सेवा संघ की चुनाव तक आवश्यकता थी, चुनाव जीत जाने के बाद इसकी क्या आवश्यकता है, और सर्व सेवा संघ की नहीं है तो जेपी की भी क्या है। इसलिए जेपी के चरण छूते जाओ, अपने मन की करते जाओ। ये गांधी के साथ भी हुआ और ये जेपी के साथ भी होने वाला है, उसके आसार लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें हमारी मर्यादा क्या हो। लोकमान्य तिलक से पूछा गया था कि तुम स्वराज्य के बाद क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा स्वराज्य के बाद कुछ बनने का सवाल ही नहीं है। आई शैल टीच डिफरेंशियल कैलकुलस इन सम कॉलेज। किसी कॉलेज में मैं गणित का प्राध्यापक बन जाऊंगा, मुझे क्या मतलब है स्वराज्य से। गांधी से पूछने की जरूरत ही नहीं हुई। हम दिल्ली में समारोह कर रहे थे और वो नवाखाली में घूम रहा था, तो गांधी का शील ही है, वो करके दिखाता है हर चीज, करके ही दिखाता रहा उम्र भर। वो चला गया नवाखाली में। जेपी अब कहने लगे हैं कि मेरे जीवन का कार्य संपन्न हो गया, एक विकल्प खड़ा करना था, खड़ा कर दिया। लोकशक्ति का आविष्कार करना था, आविष्कार कर दिया। अब इसके आगे का काम, उसने कहा था जंगरनाथ पंडित ने, उत्पत्स्यते च कोऽपि समान धर्मा कालो यम निरवधिर विपुलाच पृथ्वी। कोई समान धर्म आगे आएगा जो इस काम को आगे चलाएगा, काल अनंत है और ये पृथ्वी विपुल है, मैं क्यों चिंता करूं। इस आशा से ये आदमी एक के बाद एक निवृत्त होते चले जाते हैं। लेकिन हमको यह सीख ले, इसमें से सबक इतना ही लेना है कि क्रांति का आंदोलन सत्तानिष्ठ न बने, और सत्तानिष्ठ न बने इस मर्यादा में हम अपनी लोकसभाओं में पार्टी के सदस्यों को ले सकते हैं। पार्टी का सदस्य केवल पार्टी का सदस्य नहीं है, वो मनुष्य भी है, नागरिक भी है। आज क्या है, वो डिसइंटीग्रेटेड है। पुणे में एक दफा हुआ, गवर्नर आने वाला था लॉर्ड विलिंगडन, नरसिंह चिंतामन केळकर म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे। म्युनिसिपैलिटी ने प्रस्ताव किया कि गवर्नर को एड्रेस देना चाहिए, मानपत्र देना चाहिए। नरसिंह चिंतामन केळकर कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे। कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव किया कि काली झंडी दिखानी चाहिए गवर्नर को। तो सवेरे कांग्रेस कमेटी के साथ केळकर गए, काले झंडे दिखा दिए, और शाम को म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के नाते मानपत्र भी दे दिए। अब ये जो दो कैपेसिटीज हैं मनुष्य की, उसकी पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर देती हैं, उसके टुकड़े कर देती हैं, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता पर्सनैलिटी। तो हम लोक समितियों में हमारी अपेक्षा ये होगी कि पार्टी का सदस्य अगर आता है तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टी होगी, यानी पार्टी का आदेश और लोक समिति का आदेश, यानी दोनों की नीतियों में, पार्टी और लोक समिति की नीति में जहाँ फर्क होगा वहाँ लोक समिति की नीति का पालन होगा। ये मर्यादा उसको माननी चाहिए। Party can never be equal to the people. People party से बड़े. इस मर्यादा को माने तो उसके पार्टी का भी हित होगा और देश का भी हित होगा. गांव में गांव का आदमी कौन सा माना जाता है? जो परिवार से ऊपर उठ जाता है. अपने परिवार से जो ऊपर उठता है वो गांव में प्रिय होता है. उसी तरह से पार्टी से जो ऊपर उठेगा वो पीपल में प्रिय होगा, पॉपुलर होगा. ये मर्यादा अगर पार्टी का सदस्य नहीं मानता है तो उसको प्रवेश नहीं होना चाहिए. जो हमारी लोक समितियों को पार्टी के लिए एक्सप्लॉइट करेगा, फिर कोई भी प्रेशर ग्रुप हो, पार्टी भी एक पावर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप ही है. कोई यूनियन हो या कोई दूसरा भी प्रेशर ग्रुप हो, जो पीपल्स कमिटी को एक्सप्लॉइट करने आएगा अपने समूह सामूहिक स्वार्थ के लिए, ग्रुप इंटरेस्ट के लिए. पार्टी भी एक ग्रुप इंटरेस्ट है और मैं तो इसे एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री इंटरेस्ट मानता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट में कलेक्टिव वोटिंग नहीं है. इसलिए स्ट्रिक्टली बात की जाए तो पार्लियामेंट में पार्टी का स्थान नहीं है. कोई पार्टी पार्टी के नाते वोट नहीं कर सकती और प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नाते नहीं बैठता है, देश का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है. पार्लियामेंट का मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर है, पार्टी का मेंबर नहीं है. चुना जाने के बाद कैंडिडेट पार्टी का प्रतिनिधि, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पीपल का. तो प्रतिनिधि अगर पीपल का है तो वही उसकी हैसियत है. इसलिए मैं पार्टी को तो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मानता हूँ. और मैंने तो लॉर्ड हैलिफैक्स को कई बार कोट किया है कि ए पार्टी पार्टी इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल. लोगों के खिलाफ ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है. फिर भी पार्टी का बहिष्कार नहीं, पार्टी से मतलब पार्टी के मेंबर का बहिष्कार नहीं. वो किसी पार्टी का ऑफिस बेयरर ना हो, मेंबर है तो पहला स्थान उसको पीपल्स कमिटी को देना होगा, अपने ग्रुप इंटरेस्ट को नहीं. दूसरी चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जो अंतिम मनुष्य है उसका इंटरेस्ट पहला हो. अंतिम मनुष्य कद आ नहीं सकेगा पहले पहले, क्यों? दो कारण है. एक तो वो बहुत दलित है, पिस गया है, तो उसमें किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं रह गई है. मित्रों, सारी क्रांतियों का और सारे आंदोलनों का इतिहास यह है कि जिनके लिए क्रांति हुई उनमें से नेता नहीं आया. ये अब तक का इतिहास है, इसको बदलना है, लेकिन अब तक का इतिहास यह है. गुलामों का की मुक्तता का आंदोलन गुलामों ने शुरू नहीं किया. स्त्रियों की मुक्तता का आंदोलन स्त्रियों ने शुरू नहीं किया. मजदूरों की मुक्तता का आंदोलन मजदूरों ने शुरू नहीं किया. मार्क्स मजदूर नहीं था और यह स्वाभाविक भी है. ऐसा न होता तो हम समझते हैं कि बहुत भयानक स्थिति होती. जो मुट्ठी भर लोग सुखी हैं, सांस्कृतिक मूल्य उन्हीं के समाज में है. अब ये जो अपने को संस्कृति के ठेकेदार कहलाते हैं, नैतिकता के ठेकेदार कहलाते हैं, उच्च आदर्शों के ठेकेदार कहलाते हैं, इनमें से अगर क्रांति के नेता नहीं निकलेंगे तो फिर किस में से निकलेंगे? जो पद दलित हैं, जिनको कभी क्रांति का स्वप्न भी देखने का मौका नहीं मिला, उनमें से नेतृत्व नहीं आएगा। आंबेडकर तब आ सका जब अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन स्पृश्यों ने किया, अंग्रेजों की सहायता से किया, लेकिन किया तो आंबेडकर आ सका, फिर वो नेता बन सका। तो इसने सवाल किया एक लड़के ने मुझसे, ये जो आखिरी आदमी है इसका पराक्रम जागृत कैसे हो? इसका पराक्रम जागृत इस तरह से होगा कि हमारा पराक्रम उसके लिए हो, अपने लिए नहीं। वो जागृत होता है, हम हट जाते हैं। भूदान के वक्त मुझसे लोग पूछते थे, ग्राम हो दान हो जाने के बाद क्या होगा? हमने कहा ग्राम दान हो जाने के बाद हम नहीं होंगे और आप होंगे, ये होगा। ग्राम दान की सफलता का मतलब ही है कि आप रह जाएंगे और हम नहीं रहेंगे। ग्राम दान के बाद भी अगर हम रहेंगे तो अग्राम के मालिक हम बनेंगे, आप नहीं। तो अपने से उसमें से अपने को उसमें से तर्क कर देना, हटा देना, यही उसको आगे लाने का एकमात्र मार्ग है। अब इसमें एक सवाल आया है, वो भी महत्व रखता है कि इसमें लोकतंत्र कितना हो, नीचे से चुनाव हो। इसमें एक दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है कि हर चुनाव में धनिक गांव गुंडे और सत्ताधारी लोग आ जाएंगे, क्योंकि वही आगे आगे होते हैं। आपने कॉलेजों के चुनाव में देखा होगा ना, जो शरारती लड़के होते हैं वही चुने जाते हैं। इन चुनाव में भी देखा होगा कि जो समाज में इस तरह के राउडी एलिमेंट्स, शरारती तत्व होते हैं, वो चुनाव में जल्दी आगे आ जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है नागपुर का, एक अखाड़े का उस्ताद मेरा दोस्त था, वो मैं स्कूल मास्टर रहा, मेरा शिष्य भी था। वो आया एक दिन मेरे मुझे प्रणाम करने में, क्या बात हो गई, पेड़ा भी दिया एक, क्या बात हो गई तुम्हारा, क्या हुआ, कौन सा तुमको कौन सी सफलता मिली? कहने लगा बस मैं कॉरपोरेशन में एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। का आशीर्वाद यही है कि यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर बन जाओ, दूसरा आशीर्वाद क्या है? और था वो अखाड़े का उस्ताद अक्षर शत्रु। लेकिन वो चुना गया और एजुकेशन कमेटी का भी अध्यक्ष बन गया। तो ये न हो इसके लिए वॉलंटरी एजेंसी चाहिए, प्रातिनिधिक नहीं, वॉलंटरी। जो गांधी की नीति थी, गांधी की कोई संस्था शुरू में चुनी हुई संस्था नहीं थी। ग्रामोद्योग संघ नहीं, खादी संघ नहीं, कोई भी संस्था, हरिजन सेवक संघ नहीं, वो चुनता था आदमियों को और कहता था ये काम तुम शुरू कर दो। वॉलंटरी एजेंसी से कोई पूछ नहीं सकता तुम कौन हो। ये डॉक्टर नवनीत वहां जाता है लोगों को दवा बांटने के लिए, तो किसी ने पूछा गया इससे कि तू दवा बांटने वाला कौन होता है, कोई पूछ ही नहीं सकता। लेकिन ये कहेगा कि तुम्हारा वोट मुझे चाहिए, तो पूछेंगे तुम कौन हो वोट मांगने वाले, और तुम्हीं को हम क्यों दें। तब इसको अपनी सारी जीवन कथा सुनानी होगी और अपने सब गुण भी लोगों के सामने बघारने होंगे। नीलाम अपना बोलना होगा। तो ये दो फर्क मैंने आपके सामने रखे थे, कैंडिडेचर नहीं वॉलंटियरिज्म। स्वयं प्रेरित आदमी आए जो काम करना चाहते हैं, और सेवा के काम में उनका विरोध कोई करेगा तो बहुत मतलबी आदमी करेंगे। ये आप समझ लीजिए, जो राजनीति का मनुष्य होता है उसकी सूझबूझ बहुत लंबी होती है, वो सेवा से बहुत डरता है, जैसे इंद्र तपस्वियों से डरता रहा है, तो पहले ही कुछ इंतजाम करता है कि इसको रोको कहीं, नहीं तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो ये कोशिश तो वो अवश्य करेंगे, लेकिन आप जहां तक हो सके अपनी लोक समितियों में हैंड पिक्ड, जिनका एक दूसरे पर भरोसा हो, चाहे पार्टी के हों या ना हो, और जो निष्प्रह हो, अपने लिए कोई सत्ता संपत्ति जो ना चाहते हों, और सम्मान भी। ये तीन पथ्य हैं, सत्ता संपत्ति और सम्मान, ये तीनों जो नहीं चाहते वो क्वालिफाइड। आपने इसमें कुछ गिनाए हैं कि जो ये नहीं करता वो नहीं करता वो क्वालिफाइड है, उसमें ये तीन चीजें आप रखी। ये शराबखोरी वगैरह ये शर्तें तो रहेंगी ही, अलग चीजें हैं। उसका कार्यक्रम क्या हो ये तो आपको खोजना होगा, हर क्षेत्र का अलग अलग होगा और हर क्षेत्र की समस्याएं भी अलग अलग होंगी। लेकिन इसमें मैं विनोबा की एक बात का की याद आपको दिलाऊंगा, ग्राम स्वराज और जय जगत, ग्राम राज और जय जगत, नहीं तो क्षेत्रनिष्ठ मनुष्य पैदा होंगे, क्षुद्र क्षेत्रवादी, जिनका विजन, जिनकी दृष्टि अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाती, और यही लोग फिर पार्लियामेंट तक जाएंगे। मैं कभी कभी बहुत घबराता हूं इस विकेंद्रीकरण से। ये विकेंद्रीकरण, विनोबा ने दूसरा शब्द एक कहा था, याद रखिए उसको, विकीर्णीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण का अर्थ बिखेरना नहीं। तो बिखेर कर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। छोटे छोटे गांव और उन गांव के आकार के मनुष्य और उसी गांव की आकार की उनकी तबीयत, ऐसे आदमी अखिल भारतीय स्थानों पर जाकर बैठेंगे तो बड़ा स्थान और छोटे आदमी जो आज है, मोरार जी दिल छोटा नहीं है, आकार छोटा है, तो अगर मोरार जी प्राइम मिनिस्टर ना हो तो इस देश में उनको कौन जानता है। मैं यशवंतराव चौहान वगैरह की बातें ही नहीं कर रहा हूं, एक ऐसे आदमी का उदाहरण ले रहा हूं जो सब तरह से अच्छा आदमी है, स्पृहणीय है, जिसको हम सब चाहते हैं, लेकिन उसका आकार इस देश का के नाप का नहीं है। इंदिरा अवांछनीय है, लेकिन आकार इस देश का है। वो प्रधानमंत्री न रहे तभी देश के लोग उसको जानते हैं और जेपी से अधिक जानते हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा मित्रों, स्वराज्य से पहले राजगोपालाचार्य को कश्मीर का आदमी जानता था और खां साहब को, बादशाह खां को कन्याकुमारी का आदमी जानता था, सरदार को आसाम का आदमी जानता था और चित्तरंजन दास को द्वारका का आदमी जानता था। ये किसी पद पर नहीं थे लेकिन इनका कद, इनका आकार अखिल भारतीय था। तो इस सारी क्रांति में यह ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति का आशय यानी उसका हृदय अखिल भारतीय हो कम से कम। जय जगत का अगर न बन सके तो कम से कम अखिल भारतीय तो हो, क्षेत्रवादी न बने। इस विकेंद्रीकरण में इस सावधानता की बहुत आवश्यकता है। और मैं इस सावधानी को बहुत ही अनिवार्य मानता हूं। गांधी, विनोबा और जीपी इससे उतने नहीं घबराते जितना मैं घबराता हूं। गांधी घबराते थे लोकतंत्र से बहुत अधिक। कभी कभी लोकमान्य तिलक पर एक लेख लिखा जब वो मरे, ही बिलीव्ड इन द रूल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी टू एन एक्सटेंट दैट फेयरली फ्राइटेंड मी। ये उन्होंने लिखा कि बहुमत के राज्य पर लोकमान्य का इतना विश्वास था कि मैं घबरा जाता था। ये गांधी ने लिखा क्योंकि अल्पमत की कदर उनको थी। उस तरह से गांधी, विनोबा और जेपी भले ही न घबराते हों, मैं इस विकेंद्रीकरण से घबराता हूं। छोटे छोटे बस्तियों के आदमी बौने न बने, उनका आशय वैश्विक होना चाहिए, कम से कम अखिल भारतीय। इसकी सावधानी रखनी होगी। आप उनको, बाकी जितनी बातें आपने कही हैं उनको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उनसे मेरे सहमत हूं मैं। जिन बातों से सहमत हूं उनको क्यों दोहराऊं, उनमें कुछ जो बातें जोड़ना चाहता हूं